दो वैधानिक शक्तियां लेजिस्लेटिव पावर्स। संविधान की धारा 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अंग है तथा उसे निम्नलिखित वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। एक, संसद का अधिवेशन बुलाना तथा उठाना, टू कन्वीन एंड प्रोरोग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता तथा उठाता है, परंतु राष्ट्रपति को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। दो, संसद का उद्घाटन करना, टू इनॉग्रेट द पार्लियामेंट। धारा 87 के अधीन आम चुनावों के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रपति के भाषण से होगा। राष्ट्रपति का यह भाषण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें सरकार की प्राप्तियों तथा आने वाले वर्ष में अपनाई जाने वाली नीतियों का वर्णन होता है। तीन, संसद में भाषण देना तथा संदेश भेजना, टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द पार्लियामेंट। धारा 81(1) अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय संसद के दोनों सदनों में इकट्ठे तथा अलग अलग भाषण दे सकता है तथा इस उद्देश्य के लिए सदस्यों का सदन में उपस्थित होना आवश्यक है। धारा 81(2) के अधीन राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है जिन पर संसद विचार करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। चार, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, टू कन्वीन द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। धारा 108 के अनुसार साधारण बिल के संबंध में दोनों सदनों के बीच पैदा हुए गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति 6 महीने का समय गुजरने के बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। पांच, राज्यसभा तथा लोकसभा में सदस्यों की नियुक्ति, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा एंड लोकसभा। धारा 80(1) के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने वालों में से 12 सदस्य नियुक्त कर सकता है। धारा 331 के अधीन राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन जाति को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकतम 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। 6, लोकसभा को भंग करना, टू डिसॉल्व द लोकसभा। धारा 83(2) के अधीन राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। इस व्यवस्था के अधीन राष्ट्रपति ने 1970, 1979, 1991, 1997, 1999 तथा 2004 में लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया था। पेज 134। 7, संसद द्वारा पास बिलों पर स्वीकृति देना, टू गिव अप्रूवल ओवर द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। संसद द्वारा पास किए गए बिलों को धारा 111 के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना आवश्यक है। राष्ट्रपति बिल को पास कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है तथा कुछ सुझावों सहित बिल को दोबारा विचार के लिए वापस भेज सकता है। जैसे 30 मई 2006 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संबंधित पास किया गया बिल पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत बिल तथा सुझावों सहित वापस किए गए बिल को यदि संसद दोबारा पास कर देती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। 8, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंसेस। धारा 123 के अधीन जब संसद का अधिवेशन ना हो रहा हो तथा हालात मांग करते हों तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है तथा अध्यादेश संसद द्वारा पास किए गए कानून की भांति ही लागू होगा। संविधान की धारा 123 के अधीन व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को दोनों सदनों में पेश किया जाना अनिवार्य है तथा अध्यादेश जारी किए जाने के पश्चात संसद का अधिवेशन आरंभ होने की तारीख से 6 सप्ताहों तक अध्यादेश लागू रह सकता है। 6 सप्ताहों का समय समाप्त होने से पहले भी संसद के दोनों सदन अलग अलग प्रस्ताव पारित करके अध्यादेश को समाप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। 9, राज्य विधानमंडलों द्वारा पास कुछ बिलों पर राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति, prior approval of the president over certain bills passed by state legislatures. राज्यों के पुनर्गठन, उनके नामों और सीमाओं में परिवर्तन संबंधी कोई भी बिल राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय से संबंधित बिल राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना आवश्यक होता है, जैसे कोई बिल जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। 10. राज्य विधानमंडलों द्वारा पास कुछ बिलों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ओवर सर्टन बिल्स आफ्टर दीज आर पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स। कुछ बिलों पर राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए जाने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत होती है, जैसे अनिवार्य वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर लगाए गए कर संबंधी सार्वजनिक और निजी संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए पास किए गए बिल। ऐसे बिलों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे भी सकता है और बिल को सुझावों सहित वापस भी भेज सकता है। यदि विधानमंडल ऐसे बिल को दोबारा पास कर देती है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है।